ராகுந்தம்புரபிரம்மணராகிருதியும் சௌந்தரியசார சர்வஸ்வம் வந்தே நந்தாத்யம் பிரபன்னபாரிஜாதாய தோத்ருவேதை கோபாலயே ஞானமுத்ராய கிருஷ்ணாய கீதாமிருதுவே நம. வசுதேவசுதம் தேவம் கணசஜானோர்மர்தனம் தேவகீ பரமானந்தம் கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குரும். வம்சேபூஷிதராவநீதராபாத் சீதாம்பராதருணதம்பலாத் பூர்ணேந்துசுந்தரமுகாதரவிந்தநேத்ராத் கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வமஹம் ந ஜானே. ஹரி ஓம் நமோ பரமாத்மனே நம: ஸ்ரீ கோவிந்தாய நமோ நம: ஸ்ரீ குரு சரண கமலேபியோ நம: தேவோ நமஸ்கரவேபியோ நமோ நம:
நாராயண நாராயண. ராத் வாலி பாத் மே காஸ் பாத் க்யா தி? காஸ் பாத் தி ஏக் அப்னே மன் கி பாத் கர்வானே கி சேஷ்டா நே. ஹாம், உன்கோ அப்னே தரஃப் லானா ஔர் அப்னே கோ உஸ் தரஃப் ஜானா லே ஜானா. तो अपने मन की अपनी रुचि की बात करवाने की जो इच्छा है, ये इच्छा हम अच्छी से अच्छी, ऊंचे से ऊंची भी इच्छा रखेंगे तो भी, इच्छा करेंगे तो हमारे अंतःकरण के अनुरूप ही. अंतःकरण हमारा इतना कहां पवित्र है जो उन बातों को हम समझ सके. तो बढ़िया बात यही है, अपने मन की मुख्यता न रखे, अपनी इच्छा की मुख्यता न रखे, अपनी चाहना की मुख्यता न रखे. संत महात्माओं को, गुरुजनों को, बड़ों को, भगवान को भी अपने मन के अनुकूल चलाने की इच्छा न रखें, किंतु उद्देश्य ध्येय ये बना ले कि उनकी इच्छा के अनुसार मैं चलूं. अपनी मात्र चेष्टा जितनी उनकी इच्छा के अनुसार से हो, ये ध्येय बना ले. अभी चाहे पूरा अनुष्ठान में मत हो, अभी हम मांग भी रख दें, भगवान से भी कह दें, संतों से भी कह दें, गुरुजनों से भी कह दें, ये काम कर दो, ये कर दो, ये कर दो, कह दें भगत पर. परंतु वो कहना होनी चाहिए भूल, मालूम होना चाहिए कि हमने भूल करी, ये अपने मालूम होना चाहिए. तो क्या होगा इसका नतीजा, अंत में वो बात सिद्ध हो ही जाएगी, उनके अनुकूल चलने वाली बात बन जाएगी हमारे में. इस वास्ते खास बात उसमें है कि उनको अपनी तरफ लाने की चेष्टा न करके उस तरफ अपने ले जाने की चेष्टा करें. इसमें ये भूल, ये बहम न करें कि हम कोई भी बात कहें तो फिर हम तो अपनी तरफ ले आएंगे उनको, ऐसे संकोच भी न रखें. मन में जो बात आए खुली कहनी चाहिए, ये डर नहीं बैठा दे मन में कि कोई बात कह देंगे हम तो भाई वो तो हमारे मन की बात हो गई, ऐसे भय बैठ जाएगा तो वो अनुष्ठान नहीं होगा जो मैं कहता हूं. हाँ, भय हो जाएगा तो वो असली तत्व नहीं समझेगा. इस वास्ते निर्भय अगर बात कहे अपनी, उद्देश्य ये है कि अपने मन की करना नहीं है, तो फिर कहे कैसे मन की, कि मन में आ गई निकालने के लिए कहे. मन में जब आ गई उनको, उनको अपने बस करने की, अपने बस चलाने की, पैदा हो गई तो पैदा हो गई तो क्या करिए, निकालनी है. इस बात से कह दो उद्देश्य हमारा उन चलाने में है ही नहीं, परंतु आ जाती है, उत्पन्न हो जाती है. इस बात से कहते हैं, तेरे कह देते हैं निकालने के लिए. इस बात से निशंक होकर कहे. इतनी सरलता होनी चाहिए, जैसे एक दिन मैं दृष्टांत दिया था, बच्चा जैसे मां से कह देता है, जो मन में आई तट मां से कह दी कि पेशाब करूंगा. अब ये कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, थोड़ी विचारता है. मां से कहूं कि न कहूं, ये बिल्कुल शंका ही नहीं होती उसके, तो बस जो हो जाए मां से कह दिया, मां से कह देता है. तो ऐसा अंतःकरण निधड़क, निशंक, निश्चिंत, निर्भय होना चाहिए अपने गुरुजनों के सामने, जिनसे कि हम आध्यात्मिक लाभ लेना चाहते हैं उन जनों, उनों के सामने ऐसा अपना चित्त रहे, उनके सामने चाहे सुख है अपने मन में आई बात कह दी. ये बात जरूर है कि इतने में उद्दंडता भी ना करें. एक एक दोस्त दोनों तरफ आता है, उद्दंडता क्या, जो मन में आए पूछना शुरू कर दिया, वो नहीं, उसे विचार कर लें, हमारी शंका समाधान, समाधान कर लें मन से. नहीं पूछने की जरूरत नहीं है समाधान हो जाए तो, परंतु कोई बात उपजती है समाधान होता नहीं, तो उस बात के पूछने में संकोच न करें. मन दोनों तरफ ध्यान रखे, संकोच करके दबावे भी नहीं, और बिल्कुल फालतू बात नहीं पूछना, हमारे समय बर्बाद नहीं करे, प्रमाद न करे. तो उसमें सावधानी के साथ में जितना समाधान कर ले ठीक, दस जाए और उसमें कोई संदेह रह जाए तो कहते मैंने ऐसे बात उपजीर मैंने ये समाधान किया ठीक है ना, कहा ठीक है, जब ठीक ठीक नहीं तो बता दो आप, संदेह हो तो, और निसंदेह समाधान हो जाए तो खत्म, बात ही नहीं छेड़। पर जो कुछ भीतर में खटकता हो उस खटके को बीच सामने रख ही दे, उसको अपने पास रखे ही नहीं, ऊंट पर जब चढ़ जाए तो पगड़ी भी सिर पर क्यों रखे, बोझा तुलसी का है तो उस पर रख दे, फिर चलो मौज से आनंद से अपने बोझे क्यों रखे। तो जितना जितना वो बोझा अपना छोड़ देता है उतना ही उसका जल्दी कल्याण होता है। भगवान का सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, सर्वधर्मान परित्यज्य, धर्मान बहुपद में सही संतोष नहीं हुआ, सर्वशब्द चले गया, संपूर्ण धर्मों को तू छोड़ एक मेरी शरण आ जा, सब पापों से मैं मुक्त करूंगा, तू चिंता क्यों करता। कहते भगवान ने तो ऐसा कह दिया और हमारे को ऐसा आश्वासन न मिले तो हम क्या करेंगे, ऐसा न मिले तो क्यों नहीं मिलता है, उनमें सामर्थ्य नहीं होगा, हमारा भाव नहीं होगा, कोई ना कारण होगा। अर्जुन को मिला अठारह अक्षरणी सेना तो बहुत सी थी, अठारह अक्षरणी थी, एक बहुत चार थे ही नहीं, फिर अर्जुन को क्यों मिला, और के सामने भगवान ने क्यों नहीं कहा, तो और दूसरा शरण होता ही नहीं, दूसरा कहे किसको। तो चाहे तो उनकी ताकत में हो चाहे हमारा भाव न बना हुआ हो तो नहीं कहते, तो नहीं कहते हम क्या करें, वो मत कहें, हम मान लेते हमारे लिए कोई मना कर सकता है। रात बात बताई थी ना, शिष्य है उसको गुरु स्वीकार न करे तो क्या वो शिष्य हो सकता है, और गुरु शिष्य गुरु स्वीकार करे तो शिष्य हो सकता है। तो दोनों बातें बताई थी मैंने, वे तीन कायदा है कानून इसमें, एक तो शिष्य स्वीकार करे गुरु स्वीकार न करे, एक गुरु स्वीकार करे शिष्य स्वीकार न करे, एक गुरु से दोनों स्वीकार करे, तो दोनों स्वीकार करे वहां तो प्रश्न है ही नहीं, प्रश्न यह है दो। तो गुरु के पास में दो चीज होती है, एक तो लौकिक संपत्ति शरीर धन संपत्ति मकान चीज जो कुछ जायदाद ये, और एक होता है ज्ञान। तो गुरु बनते हैं वास्तव में तो गुरु ज्ञान के लिए बनता है, चेला बनाता है, चेला बनता है, गुरु शिष्य का संबंध होता है तो ज्ञान के लिए होता है, संबंध तो उसी के लिए है। परंतु मैं व्यवहार को सामने लेकर कहता हूँ, किसी ब्राह्मण का कोई शिष्य बना तो उस देवता के पास में कुछ धन है, साधुओं के पास में रहता है पैसा अधिक, तो वो शिष्य बनता है। तो जो गुरु जी के पास में दो तरह का धन हो सकता है, दो तरह का, तो लौकिक धन के बीच में तो गुरु की मुख्यता है, वो जब अपना शिष्य मान लेंगे तब वो उस धन का अधिकारी होगा, और अलौकिक धन के बीच में गुरु की मुख्यता नहीं है, वहां शिष्य की मुख्यता है, वो शिष्य बन जाएगा तो अधिकारी हो जाएगा, वे चाहे गुरुपना का स्वीकार न करो। जैसे एक लब्ध ने मान लिया कि मैं तो आपका शिष्य हूं, वो कहते मैंने तो बनाया नहीं, कि महाराज इसके बनाने में आप स्वतंत्र नहीं हो, मैं स्वतंत्र हूं। तो जो शिष्य बना करके सिखाया अर्जुन, उससे बढ़कर विद्वान बन गया, किस बात से, उसके अपने भाव से, अपना विचित्र भाव है, अनन्यता है, एक अपना भाव, गुरु महाराज की कृपा से ही होगा, वहां बल का नहीं है, विद्या बुद्धि का नहीं है। अरे अर्जुन के बीच में कमी क्यों रही, अर्जुन के भीतर ये भी भाव हो सकता है संभवतः कि मैं होशियार हूं, गुरु सेवक हूं, केवल गुरु कृपा ही नहीं, मैं भी होशियार हूं, मैं भी अभ्यास करता हूं, रात्रि में अभ्यास करता था अर्जुन, उसकी बात मैंने सुनी है कि लक्ष्य बिना देखे अंधेरे में लक्ष्य कैसे, शब्द वेदी कैसे हो सकता है, उसको लक्ष्य कैसे वेदन कर सकता है। तो एक दिन वो भोजन कर रहा था तो दीपक शांत हो गया, दीपक शांत होने पर ग्रास तो एकदम मुख में ही गया, मुख में ग्रास गया तो बिचारे कह रहे मुख में ग्रास कैसे गया, अंधेरा है अब तो, बच्चे थे ना याद आ रही, अंधेरा है अंधेरे में कैसे जाता है, कहते अभ्यास इस बात जाता है, मुख में जाता, कान में नहीं जाता, नाक में नहीं जाता, ये तो ग्रास तो मुख में जाता है सीधा, तो कहते अभ्यास जरूर है। उसी दिन से रात्रि में बाण चलाकर वेदन करना शुरू कर दिया अकेले अर्जुन ने, द्रोणाचार्य ने कहा नहीं, कहा इसकी परवाह ही नहीं किसी, शुरू कर दिया वो अंधेरे में, शब्द वेदी भी हो गया और लक्ष्य साधने वाला हो गया। तो ये विचार आया तो उसके मन में कुछ विचार भी था कि मैं ऐसे सीख सकता हूँ, ऐसे सीख सकता हूँ, पर एक लब्ध के एक अनन्यता है, गुरु कृपा से ही होगा और उनकी कृपा से ही होगा, उनके सामने पुस्तक रख दी, माटी की मूर्ति बना ली कि महाराज कैसे ऐसे करना है, इनकी कृपा से हमारा तो होगा। तो महाराज अर्जुन से भी तेज हो गया, अर्जुन से तेज हो गया। तो इस वास्ते ये तो है लौकिक विद्या, और अध्यात्म विद्या तो खास चीज है, अध्यात्म विद्या जब चाहता है आदमी, मेरे तो यहां तक मन में आती है कि गुरु समर्थ भी ना हो, साधक हो, और ऐसे में शिष्य का भाव पूरा हो जाए तो उसका भाव तो भगवान को पूरा करना पड़ता है, भगवान पर जिम्मेवारी आती है, क्यों किस लिए करता है, भगवान के लिए करता है ना, तो भगवान तो जानते हैं कि तेरे लिए कर रहा है और क्या संबंध है, अगर ठगने के लिए करता है, स्वार्थ के लिए करता है तो वहां भगवान नहीं आएंगे साथ में, पर तो केवल उद्धार के लिए भगवान के लिए करता है तो उसकी पूर्ति तो भगवान को करनी पड़ेगी। इस वास्ते आप ये बताया कि गुरु है उसमें कभी मनुष्य बुद्धि ना करे और मनुष्य में कभी गुरु बुद्धि ना करे। भागवत में अपराध आया है, गुरु में जो मनुष्य बुद्धि है इसको अपराध बताया, और गुरु है उसमें मनुष्य बुद्धि, मनुष्य में गुरु बुद्धि। तो क्या होता है, जहां हम स्वीकार करते हैं गुरुता, खूब ध्यान देने की बारीक बात बताएं, गुरु का अर्थ होता है भारी, गुरु का अर्थ होता है बड़ा, बड़ा होता है। तो बड़ा और भारी का मतलब क्या, कि हम बड़े से बड़ा उसको स्वीकार करते हैं, हमारी दृष्टि में सबसे बड़ा उनको मानते हैं। तो सबसे बड़ा मानकर हम भावना करेंगे तो सबसे बड़ा उस पर जिम्मेवारी नहीं आएगी क्या? सबसे बड़े हैं भगवान, वो तो कहते हैं मेरे को मान लिया इसने, ये मेरे शरण हो गया, मेरे को मान लिया। जहां ये भाव हमारा होगा भगवान पर जिम्मेवारी आ जाएगी वो। इस वजह से उसको संकोच करना, शंका रखने की जरूरत नहीं है, उसको तो निर्भर हो जाना है, उसकी कृपा से होगा। उसको करना क्या है, वो कह देते करना और कुछ नहीं करना, करने का भाव भीतर से उठा देना चाहिए कि मेरे को कुछ करना, मेरे को कुछ करना है ही नहीं, कभी चिंता है मन की ये करना है वो करना है, ना मेरे को नहीं करना, अपना तो करना कुछ है ही नहीं। शेर जी से खूब सुनी हुई मेरी बात है, वे कहते हैं संत महात्मा के पास में साधक जावे, साधक का कर्तव्य पूरा हो गया, संत महात्माओं के चरणों के शरण चला जाना इतना ही कर्तव्य था उसका, उसके बाद में उसका कर्तव्य नहीं है। अब जिसके शरण गया उसका कर्तव्य है, वो क्या करावे क्या नहीं करवावे। सुनार को सुना दे दो, सुने का कैसे बनावे सुनार बनावे, लोहे को लोहा कैसा बनावे, लोहार के लोहा बने वो लोहार बनावे, अपने तो लोहा सौंप दिया, अपने आप को सौंप दिया, मिट्टी का घड़ा कुम्हार कैसा बनाएगा, कि जैसी मर्जी है वैसा बनावे, छोटा बनावे बड़ा बनावे, सुंदर बनावे असुंदर बनावे, छोटा बनावे बड़ा बनावे, जो बनावे सो बनावे। अपने मिट्टी तो अपने आप को सुपुर्द कर दिया, जो मिट्टी सुपुर्द किया तो सुपुर्द करते पहले तो मार पड़ती है मिट्टी पर, लोहे सोने सब पर मार पड़ती है, सब पर मार पड़ती है, सब पर मार पड़ती है, फिर पानी भी देता है मिट्टी में और उसको खूब शांता अच्छी तरह से, ऐसे करके फिर लोदा बनाता है, लोदा बना करके और फिर रखता है चाक पर और चक्कर चलता है, फिर बड़े प्यार से हाथ रखता है, बहुत प्रेम से हाथ रखता है, वो प्रेम से हाथ रखते 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 ठीक बना देता है। इस तरह से गुरु महाराज होते हैं, उनकी भी ताड़ना होती है, वो त्रास भी देते हैं, धमकाते भी हैं, परंतु उसमें कहा है कि उसमें भी फायदा है। कहा है कि सज्जन की दुर्जन की कृपा बुरी, अरे भली सज्जन की त्रास, बादल कर गर्मी करे जब वर्षण की आस, बदल और गर्मी होती जोर से तपत होती है तो जोर से ठंडक होगी वर्षा होगी। इस वजह से संतों ने दिया है कि संत महात्मा पुरुष होते हैं, गुरुजन होते हैं, तो कैसे होते हैं, उनका दृष्टांत दिया है, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है, तो घड़ा बनाता है तो ऊपर से उसकी चोट लगती है परंतु भीतर प्रेम का हाथ रहता है, यूं इशारा उस पर जाहिर बाहिर जाहिर चोट, जाहिर में बाहर चोट लगती है, सब लोग देते हैं चोट चोट लगाता है, चोट लगाने के भीतर हाथ रहता है, भीतर वो गुप्त रीति से, अरे हाथ में रहे तो बिखर जाए, वो तो कच्चा तो है ही, साथ खराब हो जाए वो। इस तरह से उनकी कृपा का हाथ भीतर रहता है, उसमें संत न जाने तो भगवान का रहता है, प्रभु का रहता है, क्यों प्रभु को वो चाहता है ना, तो इतनी कृपा भगवान करते हैं कि जिनको वो संत मानता है, महात्मा मानता है, ऊंचे दर्जे का मानता है, और वास्तव में ऊंचे दर्जे का न भी हो वो, तो न हो तो चाहे तो वो बढ़िया ऊंचे दर्जे का वो पहुंचा देगा, साधक को चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे तो बड़ी जगह पहुंचा देगा, चाहे उसको गुरु जी कोई बड़ा बना देगा, चाहे बिना बड़ा बनाए उसके तो बड़े का काम हो ही जाएगा, तीनों में से कोई ना कोई बात साधक के तो हो ही जाएगी, चाहे साधक की भावना से गुरु बड़े बन जाए, और चाहे भगवान उससे सहयोग मिलाकर दूसरी जगह सहयोग करा दे, वो रोता रहे चिल्लाता रहे नहीं छोड़ना चाहता है, जबरदस्ती छोटा कर और जगह भेज दे, ऐसी घटनाएं घटती है, ऐसी बीतती है बातें, इसलिए भेज दे, और चाहे भगवान उसी में से वो उसी तत्व उसकी जो बात है उसकी पूरी कर दे, जो चाहे ना उसी पूरी कर दे वहां से। जब भगवान एक मूर्ति में से प्रकट होकर, रात मैंने बताया अर्थावतार होता है, तो मूर्ति में से प्रकट होकर के उसका काम कर दे, तो संत महात्मा पुरुष है, साधक है, किसी को अपने अच्छा माना है, तो वो तो जीवित है, उसमें अपनी इच्छा पूर्ति कर दे, क्या आश्चर्य है, भगवान सर्वसमर्थ है, सब जगह कर सकते हैं वो, तो हमें शंका करने की जरूरत नहीं है, हमें तो बस एक जिज्ञासा उस परमात्मा की, उस तत्व की, उस बोध की, उसके दर्शन की, उसके प्रेम की, यही चाहिए। हम जहां भौतिकता ले आते हैं उद्देश्य में गलती, वहां गलती करते हैं, भौतिक चीज चाहने लग जाते हैं, वहां हम जड़ता की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य में जड़ता है, अभी हमारे उद्देश्य में परमात्मा है, चिन्मयता है, फिर हमें संकोच करने की क्या जरूरत है, वे त्रास दे तो उसमें अन्न देना चाहिए, कठोरता करे तो अन्न देना चाहिए। गिर भीर गुरु नाम परुषाक्षराधि नरामात्म अलब्ध शाणोत्कृष्णा नृपाणाम न जातु मौलव मणि बसंती। लिखा है कि गुरुजनों के कठोर वचनों को जो सहता है वही महत्व को प्राप्त होता है। उस संत महात्माओं के द्वारा तिरस्कृता महत्तम तिरस्कृत महत्व को प्राप्त होते हैं। संतों की वाणी में मैंने सुना है पढ़ा है कि चेला धमक गुरुओं की सही है, गुरु की धमकी सही नहीं चाहिए, वो सहने वाला ऊंचा बढ़ता है नहीं तो कच्चा होता बिखर जाता है। वो सुनाया था ना नामदेव जी महाराज गोरे कुंभार का, नामदेव जी महाराज थे, एकनाथ जी महाराज थे, ज्ञानदेव जी आदि संत थे कई, तो नामदेव जी थे संत, तो गोरा कुंभार था कुंभार महाराज, उसके पास गए अपनी परीक्षा के लिए। तो ये सब तीर्थ यात्रा में जाते हुए वहां ठहरे तो गोरा के यहाँ ठहर गए। गोरा कुंभार ने कहा महाराज हमारे रसोई देना है, भोजन आपको करना होगा। अच्छी बात है, गोरा था बूढ़ा तो वृद्ध होने का था तो कुंभार, पर ये बड़ा आदर दृष्टि से देखते थे। भक्तों का होता है संसार वो वर्ण आश्रम से न्यारा होता है। गोरे कुंभार नाम था, दक्षिण में हुआ महाराष्ट्र में, तो बूढ़ा था वो वृद्ध, तो वृद्ध होने के कारण से भक्त अच्छा होने के कारण से ये सब बड़ी आदर दृष्टि से देखते गोरे कुंभार को। तो उसने कहा अच्छी बात है आज तुम ले आओ रसोई, अपने ठाकुर जी का आज प्रसाद लगेगा, तुम लाओ। उसने रसोई दी, रसोई देर सबको बैठा दिए, बैठा देकर के बाद परोस दिया भोजन। भोजन परोस करके वो उसे थपथपिया होता है जिसे मिट्टी के बर्तन बनाता है, ऊपर पीटता है जिसे लकड़ी का बनाया हुआ, वो हाथ में लिया और जितनी संतों की पंक्ति बैठी थी एक एक सिर में जमा दी सबके, सबके एक जमा था गया। एक तरफ आया रामदेव जी की लगी, कहते मारता क्यों है, कच्चा बेटा कच्चा फूट गया कच्चा महाराज, हम तो यही परीक्षा करते हैं कच्चा है फूट गया। बड़े पुरुष होते हैं फूट जाए तो कच्चा होने फूट जाए, नहीं तो फूटे गया कितनी मार पड़े कुछ भी हो तो पक्का ही होता है, तो परीक्षा ही होती है। ऐसे गुरुजनों की भक्त पर क्या क्या कृपा हो जाती है, कैसे कैसी परीक्षा हो जाती है, उसको हम पहचानते नहीं। हमें तो भाई पूरा पता है नहीं संतों की, गुरुजनों की बातें मैं तो सुनी हुई बात कहता हूँ, परंतु तो बातें ऐसी ये बातें है ठीक है सच्ची की, संत महात्मा ने सुनी हुई है, शास्त्र में पढ़ी हुई है, इसमें कोई फर्क थोड़ा ही है। इस बात से उनकी सहता जाए तो सहते सहते उसमें विलक्षणता आ जाती है, अलौकिकता आ जाती है, भगवान की तरफ से विलक्षणता आती है। मैंने लौकिक उदाहरण देखे हैं, साधुओं के उदाहरण मैंने देखे हैं और मैंने सुने हैं, और मेरे हृदय पर गहरा असर पड़ा है उन बातों का। आपको बात बताऊं, थोड़ा नाम क्या बताऊं, ऐसी बात बता दूं। और जिन संतों पर मेरा वो विश्वास नहीं कि वे तत्वज्ञ थे, वे मुक्त थे, कि भगवान के ऊंचे दर्जे के भक्त थे, ऐसी बात नहीं थी मेरी धारणा में। ऊंचे होंगे तो भगवान जाने, हमें पता नहीं है, अपराध न हो, पर तो अपनी धारणा में कोई भी महापुरुष और तत्व ज्ञानी हो, जीवन मुक्त हो, ऐसी मेरी भावना नहीं। गुरु जी की सेवा करी तो गुरु जी का एक तो बहुत कृपा पात्र था शिष्य, एक जगह की बात बताऊं मैं, तो बहुत कृपा पात्र, जिसके ऊपर बहुत कृपा भरी हुई है। और एक था शिष्य जिस पर कृपा नहीं थी, वो रसोई बनाते और बर्तन मलते और स्थान की सेवा करते, झाड़ू देना, बर्तन मलना, जूती साफ कर देना, इस काम में रखते थे, उस पर कोई विशेष कृपा नहीं थी। और एक का बहुत प्यार, उसको पढ़ाया, अच्छा पढ़ा करके संस्कृत का विद्वान बनाया, हिंदी का विद्वान बनाया और हिंदी के अच्छे कवि बना दिया, बहुत अच्छा उनको ऊंचे पद में प्राप्त कर दिया, ऐसा उस पर स्नेह। महाराज वो स्नेह तो रहा, प्रेम प्रेम से ही पला, परंतु अगर चल आसन उसके भ्रष्ट हो गए, आसन ठीक नहीं रहे तब गुरु जी ने मना किया। अवस्था है बचपन से पाल कर किया, जवानी होगी बिगड़ जाए, या यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एक ही मत अंदर था एक तो स्वयं अवस्था ही ऐसी है, और फिर प्यार हो शासन नहीं हो वैसा तो बिगड़ गया। बिगड़ने पर गुरु जी ने मना किया, मना कर पर नहीं माना नहीं, गुरु की बात मानी नहीं, तो गुरु जी ने निकाल दिया गुरु जी ने अपने स्थान से और अपने साधु समाज से चुत कर दिया, जब मानता ही नहीं निकाल उसको निकाल दिया। निकालने पर भी विद्वान था वो, अच्छा विद्वान, अच्छी कविता, बड़े सब बातें ठीक, पर ठीक होने पर गुरु जी ने हृदय से कहा कि दुष्ट तेरी कोई उन्नति नहीं होगी, तो महाराज कुछ उन्नति नहीं हुई। अरे वो बर्तन मलने वाला वो मेहनत बना वही, बहुत संपत्ति वैभव भी वहां मेहनत बने। मैंने दर्शन किए उनके, गुरु जी के दर्शन नहीं किए, दोनों शिष्यों के दर्शन मैंने किए और दोनों से मैं मिला हूं, बातें हुई है, मेरे साथ स्नेह रखते थे, प्रेम रखते थे, वो सब का सर्वेश्वर मालिक। तो जो गुरु जी की कृपा होती है जिस बार तो किस पर हो जाती है। अब विचार कर देखा जाए तो प्यार तो उसका लड़के का हो रहा है, अरे उसे बेचारा प्यार है ही नहीं, उसको स्नेह है ही नहीं, पर तो वो सेवा में लगा है, तिरस्कार सहता है, अपमान सहता है, सब कुछ सहता है, जूती साफ करता है, बर्तन मलता है, रसोई बनाता है। वे जब कहा करते कि देखो ये हमारे सामने ही जूती पूछता था, बर्तन मलता था, ये अब मेहनत बना बैठा, तो वो कहते थे करे क्या, कहते कहते रहो। ऐसे ऐसे उदाहरण की बातें मैंने देखी है। अरे वो संत महात्मा है, वे संत महापुरुष और न हो पर तुम्हें अगर जवान कह देते वे साफ और बरदान लग जाता, ये दोनों बातें मैंने देखी है। ये पुराने जमाने की आती है कि साफ दे दिया श्रृंगी ऋषि ने, दे दिया कि सातवें दिन तुम्हारे को ये तक्षक खा जाएगा, शमीक ऋषि के शिष्य ने ऐसा दे दिया, तो ऐसी ही बात वो साफ हो जाए, ये बात एकदम सच्ची है। आज के जमाने में ऐसी बात होती है, इस बात ये बात एकदम हमारे जस्ती की बहुत ठीक बात है। उन गुरु महाराज की कृपा को अगर प्राप्त करे आदमी तो महाराज क्या नहीं हो सकता, उसके चित्त की प्रसन्नता से सब कुछ हो जाए। कारण क्या है कि उनके जिम्मेवारी भगवान है, वो कैसे ही हो कैसे ही न हो, उनका संबंध किस बात को लेकर के है, भगवान को लेकर के, प्रभु को लेकर के है। इस वजह अपनी बात क्या रही रात के जिसमें कि खुलासा नहीं हुआ, वो करे क्या 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 करे, अनुकूल बने अपने हृदय से सिद्धांत से अनुकूल बनना ही भाव बना ले, और न बन सके तो उसे चिंता नहीं करे। क्रिया हमारी नहीं हो ये तो उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, निश्चिंत रहे, वो भी उसकी कृपा से ही होगा, शरण भी उसी भगवान की कृपा से होगा, आचरण भी भगवान की कृपा से होगा, हम अनुकूल भी भगवान की कृपा से ही बने। तो अपना क्या, अपना तो भाव जो हमारे में कर्तृत्व है, हम बन सकते हैं जो करते हैं, उस भाव में अपनी कमी नहीं रखे, बन न सके किसी चिंता अपने पर नहीं। असामर्थ्य है, असामर्थ्य की जिम्मेवारी नहीं है, समर्थ जितना है उतनी उस पर जिम्मेवारी होती है, जितना कर सकता है उतनी उसकी जिम्मेवारी होती है, नहीं कर सकता उस पर जिम्मेवारी कैसे हो सकती है। इस वजह से अपनी धारणा में कमी ना रखे, अपने उद्देश्य में कमी ना रखे, अपने ध्यान में विचार में कमी ना रखे, खूब उत्साह से करे और निश्चिंत रहे, संकोच नहीं लावे, भय नहीं लावे, कोई तरह का भय है चिंता है शोक है उद्वेग है वो क्यों रखे, वो सब उनके सामने रख दे, अपने भीतर क्यों रखे, उस सामने बात कर दे। अरे बात मेरे तो ऐसा तक विचार है मेरे मन में, और यहां कह दू देखी हुई बात है तो आश्चर्य नहीं है, मन में बड़ी हलचलन गुरुजनों के सामने कहते ही शांति हो जाती है। वे चाहे उत्तर दे चाहे न दे, समाधान करे चाहे न करे, हमें उनके सामने निवेदन कर दो हो जाए, अरे वहां कर दो जिसमें हो जाए, नहीं है दूर रहकर सैकड़ों मील दूर रहने पर अगर मन में हलचल हो गई, अरे उनको सामने मानकर सामने कर दो, हल्का हो जाएगा, सब ठीक हो जाए, समाधान हो जाए। भाव है ना अपना, उन पर जब निर्भरता है, सत्य होता है ना, सत्य के भगवान होते हैं, सदा साथ रहते हैं, ये दूरी भगवान की तीर्थी है, अपने अज्ञता के कारण से प्रभु दूर थोड़े ही है, वे तो सब जगह मौजूद है, हरदम मौजूद है, ऐसे समझे उनको, तो उनके साथ बातें हो जाए, संत महात्माओं के साथ बातें हो सकती है, उनके साथ मिलन हो सकता है, जागृत में मिलन हो सकता है, सपने में मिलन हो सकता है, बिना मिले काम हो सकता है। साधक की चाहना चाहिए केवल सरलता, उद्देश्य में सरलता, कार्य में न ला सके इतनी बात नहीं, उद्देश्य ध्येय लक्ष्य अपनी जो शरणागति अपना जो भाव वो अपना मुख्यताई केवल, ऊपर के आचरण इतना न हो तो कोई परवाह नहीं है। अर्जुन कह देता है कि साधिमान त्वाम प्रपन्नम, आपके शरण में मेरे को शिक्षा दो, कहकर के ही कहता है कि मैं युद्ध से युद्ध नहीं करूंगा, तो भगवान हंसते हैं। तो ये दोनों जो बातें अर्जुन की आई है दोनों गहरा उतर करके देखो गीता में क्या तात्पर्य है। अर्जुन स्वयं अपना समाधान कर नहीं सका है, तो जान नहीं कर सका है, नतिमा कतरम नो भरी यद्वाजे में रिवान हो जाए, ये जो बातें हुई महाराज कौन सी श्रेष्ठ है, युद्ध करना ठीक है नहीं, कौन सी बात ठीक पता नहीं, और युद्ध करे तो जीत हमारी होगी उनकी होगी इसका पता नहीं, ये अर्जुन के संदेह है अभी तक। और दोनों बड़े गुरु न हत्वा महानुभावान श्रेयो भोग तुम भेक्ष मपी लोगे हत्वार्थ कामांश गुरु नि भुंजी है भोगान दुर्ग्रह प्रतिदान, गुरुजनों को मारेंगे तो क्या मिलेगा, राज्य मिलेगा जो लोहू से सना हुआ, और नहीं मारेंगे तो क्या होगा, राज्य नहीं मिलेगा। तो महाराज गुरुजनों के मारने की अपेक्षा तो भीख मांग कर खाना अच्छा मानता हूं, और गुरुजनों को मार करके लहू से लथपथ राज्य में अच्छा नहीं समझता, ये अर्जुन साफ कह देता है। पर तो मैं करूं क्या पता है नहीं, देखिए ध्यान दीजिए धर्म पर कितनी निष्ठा है, गुरुजनों को मारना मैं नहीं चाहता हूं, इसमें अर्जुन की तरह विपरीत धारणा ही हो परंतु गहरी धारणा, गुरुजन से अर्जुन रण से नहीं डर रहा है, मरने से नहीं डर रहा है, वो मारने से डर रहा है, अधर्म से डर रहा है, अधर्म में हो जाए ये भावना है। अरे व्याकुल भगवान कह देता नहीं होती शरण, और फिर बोल देता है युद्ध नहीं करूंगा, अब बात बोलो भगवान की जगह हमारे जैसा कोई हो युद्ध नहीं करूंगा, अच्छा जाते मर्जी, ये पत्र वहीं कह रहा था, ये थे तथा गुरु नहीं होते गोविंद मुक्ता तू स्म बभू, इसके बाद ही क्या करना चाहेगी यथेच्छ तथा कुरु, न्याय यही प्राप्त होता है। पर तो ऐसा नहीं कहा भगवान ने, केवल हंसे समुवाद ऋषि के प्रहसन ने भारत मुस्कुराए भगवान हंसे। किस बात पर हंसे, क्या बालकपन कर रहा है? तो बालकपन कर रहा है तो बात क्या है, खूब उसके स्वरूप का अध्ययन करें हम, उसके भीतर जो हलचल मच रही है उस हलचल का समाधान स्वयं कर भी रहा है। और भीतर से बात आ रही है कि भगवान के शरण होने से यही बताएंगे, ये भीतर से शरण ले रखी है भीतर से, परंतु बाहर से पूरा समाधान नहीं हो रहा है, हलचल हो रही है। इस वजह से युद्ध तो मैं नहीं करना चाहता, पाप लग जाएगा। आप भगवान को समझता है, भगवान तो केवल युद्ध करने के लिए कहते हैं, अभी विजय हो जाएगी तो राजी हो जाएगा, ये यूं कहते हैं। ये तो अभी मौके पर बात कह रहे हैं, भगवान की तरफ से ये वृत्ति है। और भीतर में है कि ये पाप है और मेरे लोभ है नहीं, अरे ये लोभ के कारण से कह रहे हैं तुम युद्ध करो। इस बात से युद्ध करना मैं चाहता नहीं, मैं तो चाहता हूँ कल्याण। वो हृदय में शक्ति लाल साहब भीतर की मांग दो तरह की होती है, जीव मात्र की मांग होती है दो तरह की, एक तो परमात्मा की, एक भोगों की। स्वतः होती है स्वाभाविक, कोई ऐसा जीव हो ही नहीं सकता कि जिसमें ये दो मांग ना हो, ऐसा जीव नहीं हो सकता। दो नहीं होकर के एक मांग रहती, वो एक मांग रहती नहीं, ये भी निश्चित समझिए, मांग एक रहती ही नहीं है कभी, क्यों परमात्मा की मांग तो हटेगी नहीं, जीवात्मा नित्य है, कितनी भोगों की कामना हो जाए वो हटेगी नहीं, और इनकी सर्वता हट जाएगी तो परमात्मा की पूरी हो जाएगी, वो मांग रहेगी नहीं। तो जीव मात्र में मांग दो ही तरह की रहती है, दो तरह की रहती ही है, नियम है, दो तरह की इच्छा रहती है, मांग रहती है। तो वो जो भीतर की मांग है असली की, मेरा कल्याण हो, ये तो भीतर की असली मांग अर्जुन के, और बाहर के व्यवहार की युद्ध की, तो बाहर के लिए शरण होकर के पूछता है, परंतु भीतर से ये श्रेयस्या निश्चित में मेरा कल्याण वो बात कही है, सब कह युद्ध नहीं करूंगा। इतने पर भगवान हंसे हैं, हंसकर उपदेश शुरू किया है, समझाया तरह तरह से, ज्ञान योग से समझाया, कर्म योग से समझाया, भक्ति योग से समझाया, ध्यान योग से समझाया, किसी रीति से कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं, अच्छी तरह से समझाया। इतने पर भी अर्जुन स्वीकार नहीं करता है, फिर भगवान कहते तू मेरी शरण आ जा, मत्तित्त सत्तम भव, मत्तित्त सर्वदुर्गानि मत प्रसादा तरिष्यसि, तू मेरे शरण आ जाए, मेरी कृपा से संपूर्ण विघ्नों को तर जाएगा, कोई तू चिंता मत कर, तेरी सब चिंता मिट जाएगी, केवल एक मेरी शरण ले ले। इतने पर भी अर्जुन नहीं बोला। तब भगवान ने कहा अस्ते तुम अहंकार न श्रोषि जी विनिक्षति, मेरी बात नहीं सुनेगा, सत्यनाश हो जाएगा तेरा। ये धमकाते हैं, ये नहीं कि युद्ध करने से गुरुजनों के मार्ग से तेरा नाश हो जाएगा, तेरा पतन हो जाएगा, ये नहीं कहते हैं। मेरी बात नहीं सुनेगा, नाश हो जाएगा तेरा। क्यों कहते हैं कि शिष्य से हम आपका, मैं शिष्य हूं, तेरे शिष्य ने स्वीकार किया है, अरे मैं बात तेरे हित की बात बताता हूँ, तो वक्ष्यामि ते हितम भूय महाभाव सुनुमे परमं वच, यते प्रिय माणाय वक्ष्यामि हित कामनया, हित की कामना से मैं कहता हूँ, मेरे कामना है। दुनिया को तो कामना छुड़ाते हैं, सब कामना छोड़ो, और कहते तेरे को मैं कामना से कहता हूँ, इतनी कामना से कहता हूँ, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। इतनी कृपा सुन रही भगवान के ऊपर, और उस कृपा को लेता हुआ तू मेरा कहना नहीं करता है, तो नहीं सुनेगा तो नाश हो जाएगा। उसमें भी कितनी सावधानी से भगवान ने कहा, न सुनेगा तो नाश, इतना नहीं कहा साहब, ये तो अहंकार नाश्रित है, अत जो तुम अहंकार अनुश्रोषी विनक्षी, तो विनाश करने वाला नहीं, सुनना मात्र विनाश करने वाला नहीं है, मेरी बात न मानना मात्र विनाश करने वाला नहीं है, अहंकार के कारण से मेरी बात नहीं सुनेगा तो नाश हो जाएगा तेरा, क्योंकि अहंकार तो नाश करेगा। प्रकृति महान तो अहंकार तस्मात गणेश, ये प्राकृतिक चीज है, प्रकृति का शरण लिया अहंकार का, मेरा शरण कहाँ है, शरण लिया प्रकृति का, प्रकृति अधोगा में तू जाएगा, नीचे की तरफ पतन की तरफ जाएगा तू, तेरे स्वभाव के कारण से। इस वजह से अहंकार से मेरा नहीं सुनेगा तो तेरा नाश होगा। अनजान पड़े से न सुने, समझ में नहीं आई नहीं सुने, जिज्ञासा है नहीं सुनी बात समझ में नहीं आई, उसे नाश नहीं हो जाएगा, तेरी लग सकती देरी तुम तत्काल करेगा, जल्दी पा काम हो जाएगा, और वो जितना संदेह है जितनी देलाई है उतनी देरी लगेगी, पर नाश कैसे हो जाएगा। अरे अहंकार है कहां से, मैं समझता हूं और मैं समझदार हूं, मैं ठीक करता हूं, ये समझदारी नाश करती है। वह ऐसी विलक्षण बात आपको क्या बतावे, प्रत्यक्ष में हमारी समझ दिखती है और गुरुजनों की बात हमारे दिखती बिल्कुल बेसमझेगी प्रत्यक्ष में। ये तो आपके हमारे घटी हुई घटना है, कोई ऐसी बात है नहीं छिपी हुई, हम विचार करते हैं तो हमारी बात ठीक दिखती है कि देखो ये सी बात ये समझे नहीं, इस बात ऐसा कह दिया तो समझे नहीं, ये बात भी सच्ची हो और व्यवहार में बिगड़ भी जाए, रुपये नष्ट भी हो जाए, खर्चा भी हो जाए, स्वास्थ्य भी बिगड़ जाए, बेटा मर जाए, यहां तक हो सकता है महात्मा के कहने से दवाई दिन मर गया, ये भूल हो जाए, तो उसकी जो सावधानी है सांसारिक सावधानी, ये महात्मा का गुण नहीं है, महात्मा की कमी है। संसार को आदर देते हैं तब संसार की बात में सावधानी होती है, इसमें सावधानी क्या जरूरत है, महत्व की चीज है। और उनका संबंध तो पारमार्थिक बातों से है, तो उनकी आज्ञा पालन करने से कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है, गला सुधर जाएगा, रुपये पैदा हो जाएंगे, बेटा जीत जाएगा, ये थोड़े संबंध रखते हैं। ये तो हो जाए तो मार्ग में हो जाए, मना कौन करता है। परंतु उनका संबंध तो कल्याण से है, इस वजह से वहां अहंकार आ जाता है। देखो इन्होंने भूल करी, हम करते तो चतुराई से करते, ये तुम्हारी चतुराई तेरी चतुराई हमें धूल पड़ेगा, कर्मड़ा थारा काटा फूटे रे। वो तो प्रायश्चित होगा जो होना है संसार का काम, तो उनकी बात को रद्दी कर दोगे तो भैया परमात्मा में तुम्हारी गलती हो जाएगी, आध्यात्म उन्नति में तुम्हारी गलती हो जाएगी। अरे उनकी बात का ख्याल करोगे तो आध्यात्म उन्नति में कोई फर्क नहीं है, संसार में बिगड़ जाए। बिगड़ जाए क्या बात है। इस बात को लेकर तो मीरा भाई कहती, आप बदनामी लागे मीठी, राणा जी माने आप बदनामी लागे मीठी, भगवान के लिए चलते हैं सामने बदनामी आती तो भगवान भी परीक्षा करते हैं कि तू मेरा आदर करता है, अपने मान बढ़ाई प्रशंसा का आदर करता है, तो वह बदनामी लागे मीठी, वह बदनामी लागे मीठी, वह बदनामी क्यों मीठी लागे, और बदनामी मीठी नहीं लगती। संसार में कैद खाने में कोई चला जाए आदमी तो उसे कलंक लग जाता है, कैद हो गई उसको, परंतु स्वराज के लिए कैद है जगह मतलब फूले फूले फिरते हैं, मान सत्कार होता है उनका कैद में जाने वालों का, ऐसी कैद कहां पड़ी है। इस तरह से ऐसी बदनामी कहां है, दुनिया की बदनामी बहुत बार भोगी है, चोरी करके डाका डाल करके बदनामी भोगी है, कैद में गए हो, परंतु परमात्मा की प्राप्ति के लिए चले हो, और उसमें हो बदनामी, या बदनामी लगे मीठी, वो नुकसान मीठा लगे, वो बदनामी मीठी लगे, वो तिरस्कार मीठा लगे, वो अपमान मीठा लगे, वो जो कुछ हानि हो वो हानि भी मीठी लगे। कारण क्या है कि इसके मूल्य में हम किस चीज को पा रहे हैं, ये नाशवान जा रही है, अविनाशी प्राप्ति हो रही है हमें। मर्त्येन आप्नोति मा अमृतम भागवत में आया, मर्त्येन मन भरमा शरीर से नाशवान वस्तुओं से अमृत की प्राप्ति हो जाए, कितना सस्ता सौदा है। ये आदमी उस तत्व को समझता नहीं है, उस तरफ ध्यान नहीं देता है, इस वजह से नाशवान चीजों का मूल्य समझ लेता है, नाशवान पदार्थों का, व्यक्तियों का, घटनाओं का, क्रियाओं का मूल्य समझता है। उस मूल्य के कारण से ही वास्तव में संत महात्माओं के वचनों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, भगवत आज्ञा के अनुसार हमारा जीवन नहीं बढ़ रहा है। हृदय में हमारे आदर पदार्थों का, रुपये पैसों का, घटनाओं का, क्रियाओं का और व्यक्तियों का भगवान से बढ़कर आदर है मन में, इस वजह से गलतियां होती है। अगर ये हमारा आदर न रहे, केवल भगवान का ही आदर रहे, परमात्मा का ही आदर रहे, उस तत्व का ही आदर रहे, तो महाराज उनकी आज्ञा पालन करते हुए फट कर ले आज्ञा। सांदीपनी जी थे महाराज, कृष्ण भगवान के गुरु, इनकी बात मैंने सुनी है, कोई ग्रंथ में होता पता नहीं, मैंने तो सुनी है, लेख है कि नहीं पता नहीं है, पर सुनी में एक तत्व बड़ा सच्चा है। ये जब पढ़ते थे गुरु जी के पास सांदीपनी, तो इसकी विशेष बुद्धि नहीं थी तेज, गुरुजी का काम करते धंधा करते थे और पढ़ते थे, परंतु आज्ञा पालन में सबसे तेज थे गुरु महाराज। जो कहते जो रुको वो ही काम करना, वो सेवा करना, इसमें बहुत तेज थे। तो महाराज ने कई दफे परीक्षा करी, परीक्षा करने में उत्तीर्ण हुआ, तो महाराज ऐसी आज्ञा दी उनको। एक दिन क्या किया कि विद्यार्थी गए थे बाहर, वे लौट रहे थे, सांदीपनी बैठे थे, गुरु जी ने कहा सांदीपनी हाँ महाराज, ये लड़का खेलता नहीं कुएं में डाल दे, अपना बच्चा गुरुजी का, चट उठाया करके कुएं में डाल दिया। अब कुएं में डाला और बोले देखो 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 विद्यार्थी मेरे छोकरे तो मार रहा है, कुएं में डाल दिया। दूसरा विद्यार्थी कूदा जाकर लाकर निकाल लिया, निकाल कर लिया है। अब विद्यार्थी लगे मारने जोर जोर से, कहते इतना कैसा दुष्ट आदमी है, गुरु महाराज के बच्चे को मार रहा है, कैसा आदमी ऐसा ऐसे कर मार पड़ रही है। तू नहीं बोले कि गुरु जी ने कहा था, सफाई तक नहीं दी, सब मार सह लिया, अपमान सह लिया, छोड़ा दिया गुरु जी के जान जाए, छोड़ दी, छोड़ दो मारो मत, छोड़ दी। अब कई दिन महीने बीते, उनके बाद में एक दिन गुरु जी ने कहा शांति बनी, कहते तू अपना घर है ना इसके पीछे आग लगा दे, जो हुक्म है। गया महाराज लेकर अग्नि लगा दी, घर के अग्नि लगा दी, घर जलने लगा। वो घर जलते ही बोला गया, अरे कृष्ण अरे संदीप ने आग लगा दी, बुझाओ आग लगा दी घर में, संदीप ने इसने आग लगा दी। अब विद्यार्थी दौड़े आ गई तो बुझाई, उसको लगे मारने, कहते मारो विद्यार्थी अपना ही तो है, मारो महाराज का छोड़ दिया। अब सब विद्यार्थियों को बेचारा है कैसा ये दुष्ट है, कभी तो इसके लड़के को कुएं में डालता है, कभी इसे आग लगा देता है, ऐसा है। संदीप ने मारा तो आज्ञा पालन कर, सफाई दे नहीं, गुरु जी ने कहा था ये तूने तक नहीं की। अब विद्यार्थी पढ़ पढ़ चले गए, अब कई विद्यार्थी पढ़ पढ़ चले गए। अब जब शरीर बीमार हुआ गुरु जी का, और कहा भाई बीमार है, अब तो विद्यार्थी को बुलाओ जो हमारे पास पढ़े हैं, जो जो जितने जीवित हैं, जो विद्यार्थी हैं, सबको बुलाओ, हम जा रहे हैं, विद्यार्थियों को बुलाओ। सब विद्यार्थियों को बुलाया, विद्यार्थी अपने भेड़ ले करके और व्यस्त बन गए, काम धंधे में लग गए थे, सब ले लेकर भेज पूजा आए सभी। अब आओ बेटा आगे सब, हाँ महाराज हाजिर हैं। तो महाराज चीज देने लगे, किसी को खड़ाऊ दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को आसनी दे दी, किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को अर्घा दे दिया, किसी को निरकुशा की अपने वही दे दी पवित्री, किसी को कुछ, किसी को कुछ, इस तरह से विद्यार्थियों को अपनी चीजें देने लगे। ये देते देते संदीप आ गया सामने, संदीप को दे देंगे बेटा तेरे को क्या, तेरे को देने लगे मेरे पास कोई चीज नहीं है, इस बार से तेरे को यही देता हूं कि त्रिलोकीनाथ तेरा शिष्य बनेगा और कुछ नहीं दे सकता मैं, मेरे पास कोई चीज नहीं। अच्छी बात है, तो कृष्ण भगवान संदीप के जाकर शिष्य बने। बात क्या थी, केवल गुरु आज्ञा पालन। अब उसमें नफा और नुकसान देखे, तर्क लगावे कि बैठती बात, तर्क नहीं बैठ सकती वहां पर, लड़के को कुएं में डाल देना, घर के आग लगा देना, ये कोई काम है? गुरु महाराज कह रहे हैं बचनों की तरफ ध्यान है, क्या कह रहे हैं, उन बचनों की तरफ ध्यान, केवल उनकी तरफ ध्यान है, बस वो कह रहे हैं वो रुख है, ठीक है, अब इसका नतीजा क्या होगा, होगा जो हो जाएगा उसकी कोई चिंता नहीं। इस तरह से जो गुरु भक्त होता है, रुपयों का दिया तो कल्याण करेगा तो रुपया करेगा, गुरु जी कैसे करेंगे, दोनों को तोल कर देखो, तुम्हारे हृदय में जिसका महत्व है वो तुम्हारे काम आएगा, रुपये काम आ जाएंगे, अरे मर जाओगे तो भी नहीं आएंगे, चले जाएंगे तो नहीं आएंगे, वो तो अनित्य काम है, तो वो दोनों तोल करके अपने उसका आदर दे दिया, तो भाई वही हमारे, हमने तो उसी को ही रखा है उसको छोड़ करके। इस वास्ते हमें ऐसी भूल हम न करें, अपनी धारणा से न करें, अपने धारणा से तो बस वही एक ही आदर है अपना, एक ही तरफ। तो रात की बातों में आपने कहा कि बात क्या है, करने का मार्ग नहीं मिला, बातें तो मिली पर करने के मार्ग, तो करने के मार्ग ये बात हमने सुनी है भाई, अच्छे संतों से महात्माओं से ये बातें मैंने सुनी है, ऐसे ऐसे उदाहरण क्यों सुने हैं मैंने, कई तरह के उदाहरण सुने हैं, और कुछ कुछ देखने में भी आती है ऐसी बातें, जो गुरु महाराज की कृपा हुई है जिन विद्वानों पर, नारायण स्वामी जी महाराज थे, मैंने दर्शन किए हैं, और दर्शन नहीं किए, मेरे विद्या गुरु जी के विद्या गुरु थे, ये दादा गुरु होते हैं ऐसे, बड़े अच्छे संत थे, नारायण मुनि जी नाम से प्रसिद्ध थे, रतलाम दरबार है, मूलथान दरबार है, ये उनके शिष्य थे, बहुत ही शिष्य बनाया नहीं था परंतु बहुत भक्ति रखते थे, तो वे वहां जाया करते, तो उनकी बातें कई तरह की मैंने सुनी है, और अरबी के और संस्कृत दोनों के विद्वान थे, हिंदू और मुसलमान काफी इकट्ठे होते उनके व्याख्यान में, और वेदांत अद्वैत सिद्धांत का वे विवेचन करते थे, पढ़ाते बहुत सुंदर रीति से पढ़ाते, हमारे महाराज बहुत प्रशंसा करते थे, और उनके दर्शन मैंने भी किए, व्याख्यान मैंने भी सुना है, उनकी बात मैंने सुनी कि उनके गुरु जी थे आत्माराम जी के साधु, उनके पास वो पढ़ते थे, तो पढ़ते थे तो आत्माराम जी की थी दमे की शिकायत, तो सेवा करते, जब दम नहीं फूलता ठीक रहा तब गए अलाओ नारायण आला अजय बेटा पढ़, वे कहते तब पाठ होता और नहीं तो सेवा में ही रहती, तो दमे वाला बोल नहीं सकता ज्यादा, जब शांत रहती है तब बोल सकता है वो, तब वो जब पढ़ाते तब पढ़ाते पढ़ते, फिर कहते बेटा तुम आप ही पढ़ो, आपसे आप ही पढ़ो। इतने नामी विद्वान हो गए नारायण स्वामी जी महाराज, दक्षिण में वहां गए थे, ज्योतिष का अभ्यास नहीं था, एक ज्योतिषी मिला, उसने कहा महाराज हमें ज्योतिष में कुछ पूछना है आपसे, तो नारायण स्वामी ने कह दिया भाई हमारे पुस्तक पहले रख दो मेरे पास, मैं देख लूं फिर पूछ लेना, पुस्तक रात में रखा, रात में पुस्तक देख लिया, सुबह पूछे उन प्रश्नों का उत्तर दे दिया, चकरा गए वो पंडित, बाबा जी को ज्योतिष का ज्ञान नहीं, इतनी ज्योतिष की बात पुस्तक देख करके इतना बात कर ली रात रात में, आश्चर्य आया उनको, तो ऐसी विलक्षण बुद्धि उनके लिए, पर गुरु महाराज का आशीर्वाद था कि तुम पढ़ो, तो वो तो पढ़ो, पढ़ने की जरूरत तुम पढ़ो, तो ऐसे गुरुजनों की कृपा से विलक्षणता आती है। एक कनफटा कृष्णानंद थे, उनकी बात हमारे गुरुजी महाराज सुनाया करते, बहुत न्याय में बाधांत न्याय पढ़ा हुआ, नामी विद्वान, नवद्वीप में पढ़ा हुआ, नवद्वीप में विजय करी, और बहुत बुद्धि तीक्ष्ण, और गुरु जी से कहा शास्त्र कर लो मेरे से, अब कौन तेज होता है, तो गुरु जी ने जा कुत्ते की गोपाल एकदम भोंगता ही फिरेगा, यूं कह दिया, यहाँ महाराज कनकल में रहने वाले केशवानंद जी, भारत भूषण महामहोपाध्याय माने जाते, निराकार मीमांसा के दर्शन लिखा जिन्होंने, उनके सामने आया शास्त्रार्थ करने के लिए, कि आपसे शास्त्रार्थ करूंगा, ये प्रसिद्ध थे साधु, उस समय साधु बादशाह की तरह थे, तो पहुंचा पास में आया, शास्त्रार्थ सुन रखा था कृष्णानंद है, इन्होंने बात तक नहीं किया, निकलो 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 कुत्ते की खोपड़ी है, कौन से माता पति निकलो, तिरस्कार कर निकल, अगर बोले तो महाराज जब भी झाड़ दे, इतना विद्वान और बोले तक बात तक नहीं की, और तिरस्कार हुआ, जहां गुरु जी का अपमान हुआ वो विद्या सदेश में हुई, गुरु जी का आदर सत्कार हुआ, छोटी थोड़ी थोड़ी विद्या थोड़ी थोड़ी बात बहुत विलक्षण हुई, ऐसे मैंने देखी है, बहुत सी बातें ऐसी सुनी है, तो ये जो अपना भाव होता है ना भीतर का, वो भगवान कृपा करते हैं, लौकिक बातों में ऐसी होती है, अलौकिक में हो जिसमें तो संदेह ही क्या है, भगवान की कृपा है, प्रभु के चरणों का आश्रय है, इस बात से उसके चरणों का आश्रय है। रात से बताया रहा है भाई उनके चरणों की रज्जी का लेना क्या है, तो चरणों की रज्जी का लेना वो भी ठीक है, लेकिन असली चरणों के रज्जी का सेवन करने का तात्पर्य उनसे छोटे से छोटा अपना बन करके रहे वो अभिमान न करे। हम तो भाई चरणों की रज्जी की विराज है, मेरे शरण राम की पन ही जूती हमारे तो शरण, उस जूती के हम तो वास है, ये बिल्कुल यही रज्जी है, साफ हो गई रज्जी, उस चरणी का रज्जी लेना है। और वैसे अगर गुरु महाराज मनाने का तो उसके लेने के भी शास्त्र में आता ही है, बिना महत्वपादर जो भी एकम आता ही है, पर असली लेना वो है, उनकी प्रसन्नता किस बात में, वे राजी किस बात में है, वो मन से क्या चाहते हैं, इस बात की तरफ ध्यान दें, फिर हमारी उन्नति होगी, इसमें संदेह नहीं। पालन हम नहीं कर सके, पूरा न कर सके, तो हमारी तो त्रुटियां रहती है, हमारी त्रुटियों की तरफ अगर वे देखें तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। रात जैसे बताया था ना, उनको कहे हम महाराज कृपा करो, तो वो कृपा करो कहना भी उनका निरादर है। कृपा करो का अर्थ यही है कि उनको कृपालु हम नहीं मानते, तो हम नहीं मानते हैं, परंतु हम नहीं जानते हैं, इस बात को वे जानते हैं, वे जानते हैं कि ये जानता नहीं, इस बात को सतले करेंगे, ठीक है भैया यूं करो, अच्छी बात है, क्या बात है, अभी यूं करो, अभी यूं करो, कृपा करो भाई, कृपा तो भगवान करेंगे भैया, कृपा करने वाला प्रभु है, परमात्मा है, अभी भाई मैं कृपा करूंगा, कृपा करने वाला भगवान है। संतों की कहीं भी आप देखो, याज्ञवल्क्य जी के वहां पर जन के यज्ञ में गौएं रखी, सोने का सिंह मढ़ा हुआ, रूपे खुर मढ़े हुए, हजार गौए हैं, ब्रह्म ज्ञानियों में सबसे श्रेष्ठ हो गौ को ले जा सकता है, सब चुप रहे। तो याज्ञवल्क्य जी ने अपने शिष्य से कहा गौ को ले अपने आश्रम में ले लो, तो वे बोले महाराज यू नहीं बोल सकते, कैसे ले जाएगा गौ, गोकर्मा वे हमारे गौ की जरूरत है, ये नहीं बोला है कि हम ब्रह्म ज्ञानी हम सबसे श्रेष्ठ है, गौ की आवश्यकता है, आवश्यकता नहीं ले जा सकता, गौवें वही ले जा सकता है जो ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ, सबसे ब्रह्म ज्ञानी हो वो ले जा सकता है, दूसरा गौवें नहीं ले जा सकता। और आप काम तो कर रहे हैं वो जो ज्ञानी महात्मा करें वो, और कह रहे हैं कि हमारे गौवों की जरूरत है, ऐसा नहीं होगा महाराज, अगर हो तो आप बताओ बात, तो कि भाई ब्रह्म ज्ञानी हो तो हम नमस्कार करते हैं, आप पूछना हो तो कोई बात पूछो, आप प्रश्न पूछे सबका उत्तर दे दिया, ठीक धड़ाधड़ा जानते थे उस तत्व को, अब बोलो कोई पूछो, तो साकल निनाव का ऋषि उठा, वो कहते मैं पूछता हूँ प्रश्न करता हूँ, किसमें वो तो प्रोत है ये उस महर, ये पृथ्वी महर, पृथ्वी जल महर, तेज महर, वायु महर, आकाश महर, फिर महत्वोत्तर प्रकृति, प्रकृति परमात्मा, फिर वो परमात्मा किसमें वो तो प्रोत है, कि वो स्वयं ही नहीं अपनी महिमा में अपने स्वरूप में, कि नहीं नहीं आप ठीक तरह से उत्तर दो, तो कहते देखो अति प्रश्न करोगे तो सिर कट जाएगा, तो ये अति प्रश्न है, जो बात वास्तव में कह दी, फिर अगर ये प्रश्न कर दी अति प्रश्न नहीं करना चाहिए, कि नहीं मैं पूछता हूँ, बस खट कट गया माता, अब कोई पूछे जिसके दो सिर हो आते, तो पूरा नहीं ये नहीं कहा मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हूँ, ऐसी बात नहीं कही, अब तो भाई हमारे गौ की जरूरत है, और ब्रह्म ज्ञानी हो तो ब्रह्म ज्ञानी हो तो हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, नमस्कार करते हैं, वो ज्ञान का अभिमान नहीं, मैं ज्ञानी हूँ कहने में दोष आता है, व्यक्तित्व आता है कि नहीं, व्यक्ति होता ज्ञानी नहीं होता, ज्ञानी व्यक्ति नहीं होता, वो तो बोध होता है स्वतः, इस वास्ते उनमें अभिमान नहीं होता, स्वाभाविक ऐसी बात होती है। तो शिष्य जो चाहे तो चाहे सो ले सकता है, वह गुरु महाराज की कृपा रहती है, गुरु महाराज असली कृष्ण वंदे जगत गुरु, गुरु में तो गुरु तो केवल वो चोली सीख है, अवतार तो कृष्ण का है, उतरते हैं वो ओके जी को हम गुरु मान ले, हमारी वहां भावना हो जाए भगवान वही काम करते, और उसी चोली में उतर जाते, इस बात से जिम्मेवारी किसकी, जिम्मेवारी उसकी है जो कृष्ण वंदे जगत गुरु, जगत में प्रधानाध्यापक है ना, हेड मास्टर है वो, जगत गुरु है तो जगत गुरु पर ही होगी सभी जिम्मेवारी, इस बात से वो आएगा, वो काम करेगा, सब वो करेगा, इस बात से अपने तो निश्चिंत और निश्चिंत होकर के और उसकी आज्ञा के अनुसार से काम करे, रुख के अनुसार से काम करे और वैसे ही चले। इस बात से गुरु में भगवत बुद्धि हो, गुरु बुद्धि हो, महात्मा बुद्धि हो, कोई हो पर भगवत बुद्धि हो, वास्तव में शरीर होता है वो गुरु नहीं होता है, गुरु ज्ञान होता है, गुरु तत्व होता है, परमात्मा गुरु होते हैं वास्तव में। पर देखो ये कई तरह से व्याख्या होती है, सरदर जी की सेवा भी बताई, शरीर की सेवा भी बताई है, वचनों की सेवा भी बताई है, भावों की सेवा भी बताई है, स्वरूप के तत्व की सेवा और उसकी प्राप्ति की प्राप्ति वो सेवा बताई है, परंतु ये सब की सब लागू कहाँ पड़ती है और किसके पड़ती है, कि जो जितने दर्जे का शिष्य है उतने दर्जे की उसके लिए लागू पड़ती है और वहाँ अधिकार है, और उसी के अनुसार करते हुए अगाड़ी बढ़ जाएगा। पहले जब उसका शरीर में रुपयों में मोह है तो उसके द्वारा ही सेवा करेगा। भक्त कण्णप की बात आती, कण्णप दक्षिण में भक्त हुए हैं, कालहस्ती तीर्थ है, स्वर्ण क्षिदाजा नदी है, तीर्थ यात्रा में गए थे पहले शरीर जी के साथ में, तो वहां पर हमारे वहां गीता जयंती का उत्सव मनाया था, तो दक्षिण में जाते ही पहले आरंभ बड़ा मकान बड़ा मंदिर वहां से शुरू हुआ था हम लोगों की यात्रा में। तो कालहस्ती का वहां तीर्थ है, तो वह कर्ण में एक भक्त हुआ है, तो पहाड़ के ऊपर उसका स्थान है, तो वहां भगवान शंकर की मूर्ति थी, उसी सेवा के लिए वो गया। तो होते ही आकर्षण हो गया कि हमारे इष्ट देव है, उनकी सेवा करूं। तो मेरा सेवा करूं तो क्या करूं, कि बढ़िया से बढ़िया सेवा करूं। तो जानवरों को मार करके जानवर का बढ़िया से बढ़िया मांस ला करके चढ़ाएगा। अब उसी दृष्टि में वही बढ़िया चीज थी। अब रोजाना ब्राह्मण पूजन करने के बाद दूसरे देखे तो मांस पड़ा है, वो बेचारा वह जल ला ला करके चढ़ पहाड़ पर उसको साफ करता, अभिषेक करता, धोता, मंत्र जपता, शुद्धि करता, सब शुद्धि करके धूप दीप आदि करके फिर पूजन करता, पूजन कर और फिर वो जाता, वो आता उसमें फिर गंदा कर जाता है। इस तरह से कई दिन बीत गए, उसको बड़ा गुस्सा आ रहा है कि भ्रष्ट कौन कर देता है, मंदिर को भ्रष्ट कर दे, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, अभिषेक करना पड़ता है, शुद्धि करनी पड़ती है, कौन ऐसा कर देता है। तो एक दिन वो छिप करके वहां रहा, तो उसको देखा अगर मंच चढ़ाया उसने, तो उसकी पूजा बड़ी विलक्षण, भगवान शंकर का अभिषेक करे तो क्या करे, पहले जाता वहां स्वर्णक्षेत्र नदी पर, मांस ला करके पुष्प आदि लेकर के और जाता नदी पर जा करके मुख में पानी भरता, हाथों में बच्ची जानी सामग्री की, भगवान शंकर के वहां जाता और जाकर के पैर से भगवान के निर्मल था वो हटाता, पहले पूजना उसको ठोकर से उनको दूर करके कुल्ला थूकता, वो थूक कर फिर चढ़ाता अपनी, ये पूजा की पद्धति थी उसकी। इसको देख कर उसको बड़ा गुस्सा आया, तो उसे ताड़ना करी, ताड़ना करी, डर गया, सीधा साधा था, डर गया, तो उसको सपना दिया कि तुम ऐसे मेरे भक्त का तिरस्कार करते हो, वो मेरा भक्त है, उसकी पूजा बनी बहुत प्यारी लगती है, जैसे माँ के गोदी में बच्चा लात मारता है पर माँ को गुस्सा आता है, ऐसे उसका पैर मेरे को बहुत प्रिय लगता है, उसका वो जल बहुत प्रिय लगता है। माँ कोई कड़ी चीज और चबा कर दे दे बच्चे को, बच्चों को ऐसी बात हो दूसरी बात होती है, जो मेरे को बहुत आनंद आता है, बड़ी प्रियता होती है, इस वजह से तुम उसको तंग मत करो। बेचारा डर गया, अब वो पूजन किया तो उसको धमकाया कि तू जो इसको डराता है ठीक नहीं है, इसकी पूजा मेरे को बहुत प्यारी लगती है, ये बड़ा ऊंचा दर्जे का भक्त है, महाराज मैं कैसे मानू इस बात को, जब पूजा पद्धति नष्ट करता है वो तो भ्रष्ट कर देता है मंदिर को, कि तुम कल देखना। तो वो छिप गया देखने के लिए, अब वो गया वहां जाकर के पूजन करने लगा, तो भगवान शंकर की एक आंख में खून आ रहा है, आंख में खून आता देखा तो मेरा रो पड़ा एकदम, और हमारे देवता का खून आ गया, अब आंख में बड़ी पीड़ा होगी, क्या करें, अपने पास जितने इलाज सब कुछ किए पर तो वो ठीक नहीं हुआ। तो अंत में उसने ये समझ रखा था कि आंख जहां खराब हो तो दूसरी आंख चढ़ाने से ठीक हो जाए, तो वो आंख निकाल ली, अपनी आंख निकाली, शस्त्र से अपनी आंख निकाल कर उसे आंख बैठाई, आंख बैठी वो आंख तो ठीक हो गई। अब देखे दूसरे दिन वो दूसरी आंख में खून पड़ रहा है, तो विचार किया अब क्या करें, ये एक महाराज ठीक हो गया, आंख एक ठीक नहीं हुई है, तो दूसरे दिन अब क्या करे, तो आंख दूसरी निकाले तो देखेगा ऐसे, तो एक तो पैर रखा उस दुखती आंख रहे ऊपरी पैर, कहां लगाऊंगा आंख, एक तो आंख पहले निकल गई, अब दूसरी निकाल दूंगा तो दिखेगा तो आंख नहीं। तब उसने क्या किया कि वो अपनी आंख निकाल कर पैर का वहां अंगूठा लगाया हुआ वहां टो करके और वहां अपनी आंख दूसरी लगाई, भगवान शंकर प्रकट हो गए, उसने चक्षु दे दी। अरे उस भक्त ने देखा, देख तू कहता मांस चढ़ाता है, मांस कौन चढ़ा सकता है, ऐसी पूजा वो कर सकता है अपने अंग को काट कर दे सकता है जिस देवता के लिए, वो जिसका भाव है वो कुछ भी प्रकट करे, कुछ भी अर्पण करे, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना भीतर का भाव है कि अपने अंग काट कर दे देना है देवता को, हमारे स्त्रियों के काम ठीक हो जाए, हमारे अंधे हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा कुछ नहीं देखना है, इसमें वहां तत्परता होती है, भगवान प्रकट हो गए। तो ऐसी भावना उसकी होती है भक्त की। अब इतनी भावना उसने पूरा विश्वास दिया कि उसकी पूजा पद्धति कौन सी बढ़िया थी, परंतु वो अपने अनुरूप जिस स्थिति में स्थित है उसमें बचाकर नहीं रखता, भावना इतनी ऊंची दर्जे की बात इतनी गए, इस बात से वो सेवा शरीर की भी करे, आज्ञा पालन भी करे, मन की भी करे, कहां तक करे कि जहां तक तो उसकी बुद्धि पहुंचती है, जहां तक तो उसकी स्थिति है, वहां तक तो वो करता है। अपने भीतर में कोई तरह का द्वैधी भाव नहीं हो, भीतर में कोई तरह का विचार नहीं है, कपट नहीं है, विचार नहीं है। अमाया अनुवृत्या तुष्येद आत्मात्मदो हरि, एकादश स्कंद में लिखा है गुरु की सेवा कैसे करे, तो दो बात लिखी है वहां, अमाया अनुवृत्या, कपट रहित करे और अनुवर्तन करे, वो जैसे कहे जैसे सुने जैसे बात उस तरह से तो उसके हमें हाँ मिला तो जाए मन से, और भीतर कपट कुछ नहीं, सरलता से करे, तो वो सरलता भगवान को बहुत प्रिय, सीधापन भगवान को बहुत प्रिय है। अच्छा धर्मात्मा पुण्यात्मा हो परंतु मन में विचार रखकर कुछ करता है, कपट रखता है, तो भगवान राजी नहीं होते। अगर पापी से पापी दुराचारी से दुराचारी हृदय खून लेता है, तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छेद्र न भावा, पता ही उसे संस्कृत नहीं पाता और पापी कितना ही हो। सनम को हो ये जीव मोहि जल बही जन्म कोटि अघनाश ही तब ही कोटि विप्र अघला गही जाही आये शरण तजो नहीं ताही। क्रोध ब्रह्म हत्या लग जाए वो ब्रह्म हत्या नहीं अटकाती भगवान को, कपट अटका देता है भीतर का भाग है कपट का वो अटका देता है। तुम वो भीतर का दिखावटीपन नहीं हो, चालाकी ना हो, हमारे में दिखावटीपन रहता है, दम्भ रहता है, चालाकी रहती है, उनको दिखाते हैं और है मन में उतनी नहीं है, ये भाव भगवान को प्रिय नहीं है। जैसी बात है जितनी सरल जैसी है, दिखावटीपन कुछ भी नहीं। असर डालने के लिए हम विचार करते उन पर असर डालें, क्या असर डालो। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, अरे का पर्दा भरतार से दिन देखी सब दे। अब क्या पर्दा रखे उसे, वो अंतर्यामी है भीतर विराजमान है प्रभु। नान्यास्या रघुपते हृदय स्मदीये सत्यम बदामित भगवान अखिलांतरात्मा। गोस्वामी जी कहते हैं महाराज आपकी साथ सत्य कहता हूं, क्योंकि आप अखिलांतरात्मा हो, कपट कैसे चलेगा। दूसरे से कोई कपट कर ले आपसे कैसे चलेगा। तो संत नहीं जान सकते, महात्मा नहीं जान सकते, अंतर्यामी नहीं होते हैं, परंतु अपना कपट रखने से अपने बाधा लग जाएगी। इस वास्ते अपने दिखावटीपन नहीं हो, अपना कपट नहीं हो, अपने कोई विचार नहीं है, अपने तो सरल हृदय है, सीधा हृदय है, साफ साफ बात है, अच्छी है तुम मंदिर साफ। भाई जी ने एक दृष्टांत दिया था, एक राजा ने अपना सुंदर रथ बनवाया बहुत कीमत लगा करके अपनी शौक से। वहां घूमते हुए नारद बाबा आ गए, नारद बाबा आ गए, नारद बाबा को देखा बड़ा आदर सत्कार किया और कहा कि महाराज हमने देखो रथ बनवाया है ऐसा, तो आप इन पर सवारी करो विराजो। नारद बाबा को बैठाया, घुमाए, महाराज आ गए हैं, ये आरंभ हो जाए, श्री गणेश हो जाए, मुहूर्त हो जाए, महाराज विराजे, अच्छा है। घुमाए फिर कहा कि महाराज बोलो, महाराज बात बताओ कुछ, कहते रथ हमारे को दे दो। नारद जी ने कह दिया हमें दे दो रथ ये। तो कह रहे महाराज रथ तो मैंने बहुत वर्षों से ये बनवा कर तैयार करवाया है, तो ये तो मैं रखूंगा, ऐसी बात तुम रखो। फिर जब रवाना होने लगे तो राजा ने पूछा कि महाराज मेरी कोई त्रुटि हो तो बताओ, कोई सुधार की बात बताओ। सुधार की बात बताओ, हाँ कि तुम्हारे चीज कोई मांगता तुम देते नहीं हो। अब विचार इतना नहीं आया महाराज जी की सरलता कितनी, रथ की कोई दर्ज नहीं, रथ की कोई चाहना नहीं है कि दे दो, अच्छी बात नहीं देते, अच्छी बात तुम रखो, बिल्कुल देने न देने में एकदम कोई फर्क नहीं। अब वो बताओ हमारी त्रुटि, त्रुटि एक ही देखने में आई अपने सामने और देखने में आई, हम त्रुटियों की तो अध्ययन करते हैं, भगवान का अध्ययन करें, हम तुम्हारी त्रुटि देखने बैठे, तो ये अभिमान नहीं त्रुटि तुम देखे, तो देखा त्रुटि क्या है, तो भाई ये दिए नहीं चीज, ये देखी हमने वही कह दी। चतुर आदमी तो यूं कह कर दी कि मैंने कहा कि नहीं दिया, वो अब आप पीछे कर दो, ये त्रुटि है तो मेरा लोभ सिद्ध हो जाएगा, आसक्त मानेंगे, क्या मानेंगे, विचार किया तो कितना है। ये नारद जी का हृदय सरल है, ये सरलता का सीधापन है, पूछ लिया वो बात कह दी, मांग लिया वो बात मांग ली, न दिया उसमें मस्त, पूछ लिया वही बात कह दी। तो ये सरल हृदय है ना, ये भगवान को बहुत प्यारा लगता है। इस वजह से पापी हो, दुराचारी हो, सद्गुणी हो, सदाचारी हो, कैसा ही ज्ञान हो, हृदय साफ रखे, तो संत महात्माओं से ऐसा ही रखें। इस वजह से जग बह गयो रे माया मोह की धार, जग ये बह गयो रे माया मोह की धार, जग गुरु से कपट नेह नारी से, गुरु से कपट नेह नारी से, अरे ऐसा ऐसा मूरख हो रहा रे माया मोह की धार, जग ये बह गयो रे माया मोह की धार, जग बड़े घर ताली लगी रे, हे मोटे घर ताली लागी रे, मना थारियों तुहागी रे, ताली लागी नाम से रे, पड़ो है समन से सीर, ताली लागी नाम से रे, पड़ो है समंद से शीर, मीठा मेवा छड़ के मारे कुण पीवे करवो नीर, बड़े घर ताली लगी रे, हे मोटे घर ताली लगी रे, मना धरियो नीरे छिलरिए नहाऊं नहीं रे समदरिए कौन जाए छिलरिए नहाऊं नहीं रे समदरिए कौन जाए नासा गंगा गोमती मारे पाप शरीर रह जाए बड़े घर ताली लागी रे हे मोटे घर ताली लागी रे हे मना थारियो नात वागी रे काच कथिर बिनजू नहीं रे लोहा मरुआन भार काच कथिर बिन जो नहीं रे लोहा मरुआन भार सोनो रूपो मारे दायन आवे हीरा रो जो पार बड़े घर ताले लागी लागी रे मना थारियो नात वागी रे हाली माली जाचू नहीं रे ना जाचू सिरदार हाली माली जाचू नहीं रे ना जाचो सिरदार कामदार से काम नहीं मैं तो जाय मिलूं दरबार बड़ेगा ताले लागी रे अरे मना थारियो नात भागी घर ताले लागी रे हे मना थारी